Thank you. What can you do? I'm Thank you. और तमाशे दिखाए, पर यहाँ चार asker silmeye mayonez yaratıya dekar. Taaccu ve nehi, taaccu ve nehi zinname bati margali kaysa, taaccu haya ki isme zinni ve zinna rev saki kaysa. Kaha parti ki bati, kaha parti ki bati baba mucbo sinye se kula kaysa, de dukhiya aap se baba bulayi ab gayi kaysa.
चंद हजार का मतलब फिर भी कारण जान लगा
भी था कि ट्राइबल था मगर ये कहा मुसलमान लोगों पूरे दिन समाते अपने सीने में एक बार का उसमें आयु वाले शादी थी जब शादी हुई तब तो मुसलमान हार चुके थे कुछ वो मैदान का रंग तब्दील हो गया था खुदा को दरिया बराबर गुरूर पसंद नहीं मगर गुरूर जैसा अल्फाज तकबुर जैसा मजबूर जैसा अल्फाज और अदा को भी अल्लाह पसंद नहीं करता वो मुसलमानों को अल्लाह ने दर्श दिया वो मुसलमान जो छोड़े थे काफले में से थोड़ा सा लश्कर था वो तो समझते थे कि कहाँ इतना कभी लश्कर कहाँ मुसलमान करने वाले हमें तो हारना है और मरना है एक मरतबा ऐसे नहीं मरना है कि हम बैठ गए तुम आपके पास हो जितना हो सके हमें सामना करना है अपने बूढ़े चुके बच्चे चुके हैवान थे उससे पहले से तैयारी की एक महसूस जगह जानवरों को अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को अपने बीमारों को बूढ़े को छोड़ कर आए थे उसके लड़ने वाले और मरने वाले थे गले में तलवार थी पहले कफन पहन लिया था उसके बाद तलवार ली थी वो बड़ी शान से बड़ी बच्चे को मामला करते थे और उनका दो शोभा था विश्वास थी एक बहन था हमारी ताकत मुसलमानों ने जब अपनी ताकत से दूर किया वो थोड़े से लश्कर ने यहाँ रहने का रंग बदल गया मैदान का रंग बदल गया के पास खड़े थे बात करके उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी जब जरूरत होती थी कुछ कहने का कुछ ऐलान करने का तो नबी उसे कहते थे वो जमाना को माइक का था नहीं एक मरतबा उसने कहा कि तुम उसे बुलाओ और नबी ने जो जो कहा उसने कहना शुरू किया गैरत दिलाई शर्म दिलाई भाई वो तुम पर तुम कहाँ चले एक औरत निकल आई कहते हैं तो सेविया उसका नाम था वो आई कि भाई वो मुसलमानों उसमें से भागने वाले और पहाड़ी से चढ़ जाने वाले बाद में तो खलीफा बने गए वो भी बुजुर्ग थे एक मरतबा उसने मच्छी जमीन से खास उठा उठा कर भागने वाले मुसलमानों के मुंह से देखना शुरू किया उसके पास कोई हथियार न था वरना वो मार देती वो कहने लगी भाई वो रहमतुल्लाह जमीन को छोड़ के चले वो खड़े है तुम चले तुम्हारी जान के लाले पड़े उनकी जान की कोई हिफाजत नहीं करता ऐसी गैरत दिलाई ऐसी गैरत दिलाई कहते हैं कि लोग वापस आए फिर जो डट के मुकाबला किया उस वक्त आई ये मुकाबला थी कि तुम गंभीर तादाद पे फकर करते थे तुम्हें खुदा पे भरोसा नहीं रहा अपनी ताकतों पे भरोसा गया इस माने में तुम्हें इबरत दिलाना थी खुदा के कदीम में कुरान में वो बात रखी जो हमें कयामत तक इबरत देती रहे हमारे हिदायत रखती रहे न वो किस्सा है न वो कहानी है वो बात से हमें ज्यादा हिदायत मिलती है वो बात बार बार लिखी होती है जो बात से हमें मामूली काम होता है वो बात एक मरतबा लिखी है यहाँ खुदा के कदीम ने पूरी जंग का हाल लिखा आयत नाजिल हुई लिखा उसके बाद छोटा सा पिछड़ा इस्तेमाल इसमें बता दिया गया है कि हमने इसीलिए तुम्हारी मदद की तो वो वक्त याद करने लगे अब ये वक्त जुबान हुआ तुम्हारा भरोसा लश्कर पे हो गया उस मेरी मेरी ताकत पे कोई भरोसा न रहा तो एक मरतबा उस वक्त भी तुमने आजमाया कि जमीन तुम्हारे लिए कम हो गई भागने का रास्ता न रहा फिर खुदा के कदीम ने उसकी मदद की यहाँ हम गुनहगारों को हिदायत की तफसील कारों ने लिखा है कि इंसान को तीन बात पे बड़ा गुरूर आता है एक दौलत पे एक सेहत पे एक खूबसूरती पे इतना गुरूर, इतना गुरूर जिसकी कोई हत्या नहीं की, फिर हम भूल जाते हैं बार बार जाकर सकरा हज करते भी है, हदीस में देखते भी है कि खुदा से करीम सूरत से मोहब्बत नहीं करता, सीरत से मोहब्बत करता है। दूसरा, कोई काला अपने हाथ से नहीं बना, कोई माजूर अपने हाथ से नहीं बना, कोई मम्मी ने अपने हाथ से अपनी औलाद नहीं बनाई, वो तो अल्लाह का करिश्मा है। इंसान क्या बनाए, शक्ल और सूरत बनाने वाला वो है, वो जैसी चाहे उनकी मसीहत, उनके पास मुस्कुराने की कोई कमी न थी, उनके पास आंखों की कमी न थी, हाथों की कमी न थी, कानों की कमी न थी, हाइट की कमी न थी, वो जैसा चाहे जो मुनासिब शक्ति वो बनाए। उन पर अगर हमने हसद किया या उन पर हमने मजाक की या उनकी हमने बात की कि पूरा बहन ऐसी है, पूरा बीटी ऐसी है, तो एक मरतबा खुदा की बनावट में नुक्स निकाला। बनाने वाला खुदा है, किसी को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ये मूर्ति है, ये काली है, ये मूर्ति है, जो भी है। हम कहेंगे कल हम ही मोटे हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, रोते चले आजकल कहने का मतलब ये है कि खुदा से करीम कहता है गुरूर में करो, खूबसूरती से गुरूर तो था अबु लहब को, अबु लहब इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, लोगों ने उनका नाम ही रख दिया शोले का बाप, अबु लहब यानी शोले का बाप। अरबी में एक मीनिंग उसका ये है बुराई का बाप, मगर एक मीनिंग ये भी है, उसका मतलब ये भी है कि जो अंगारे को कहने उसे लहब कहते हैं, तो अबु लहब वो अंगारे का बाप इसलिए कहा कि उसकी शक्ल और सूरत देख कर लोगों के सीने में हसद की एक आग बरसती थी, एक अंगारा लगता था कि ये है कैसा सुर। तीसरा नाम इसलिए उसे ये दिया गया कि उनका जो रुखसार था वो अंगारे के बराबर था, इतना वो खूबसूरत था, इसीलिए उसे अबू लहब अंगारे का बाप कहा गया। खूबसूरती के वो चर्चे थे, वो तो पूरा न समाता था, मगर हम आप सभी उसे जब याद करता है कयामत तक समाना उसकी खूबसूरती को बड़ा याद करेगा। कुरान ने जो लौटे किए उसकी खूबसूरती थी, कुरान का किरदार तो हम कैसे भूलेंगे, मगर कैसे याद करते लालच के साथ कहा रही वो खूबसूरती। जब भी उसे याद करते लोग लालच के बगैर नहीं रहते, तो खूबसूरत को अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह खूबसूरत को लाजिम चाहता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, साथ में खूबसूरत होना चाहिए, बाबरकत कोई स्याह रंग हो मगर उनकी सीरत अच्छी हो, जैसे बलाल बलाल पे क्यों जमी गई। उन लोगों को जब शोर गुल हो गया था, तहलका मच गया था, इंकलाबी बर्बाद हो गया था, जब बलाल ने पहली औदान दी थी, क्या कहना उन अरबों को इतना दुश्वार गुजरा, इतना दुश्वार गुजरा कि गजब हो गया। कल्खी बात है, हमारे सुधारने के गुलाम आगे झुक झुक के आ जाते थे, कमर तक झुके, निगाह मिला न सके गुलाम। उस जमाने में गुलाम की क्या हैसियत थी कि आका के सामने देखे, यहाँ एक मरतबा गुलाम गुलदस्ते पे आवाज बुलंद करे, हम दौड़े दौड़े जाए, अय्या सुने के भागना होगा। नबी ने बताया था, इसे कहते हैं ना मुनाफिक, नबी के मुंह पे करके रहे, दिल में पक्के सभी ईमान लाए थे। एक मरतबा नबी से कहा कि हमने क्या जवान मर गए थे, कोई मालदार न था, कोई खूबसूरत न था, कोई कमाल वाला न था, कोई हुस्न जबान वाला न था, आपकी निगाह उस पर क्यों जमी, आपने बलाल को गुलदस्ते पे चढ़ा दिया, अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता, उसका कद बहुत छोटा है, उसका रंग सियाह है, उसका घुंघरू बाल है, बड़े बड़े होंठ है, चेहरा थोड़ा बड़ा है, ये अच्छा नहीं लगता, मगर दिल गया उसको अल्लाह देखता है। ये मर्तबा जब छोटे को छोड़ो उनका दिल क्या था नबी मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे कुछ जवाब दिया। एक दिन उन लोग ने बात भी बनाई कि चलो नबी मर्तबा सुन लेंगे तो वो भी ताज्जुब करेंगे कि अरबी बोलने वाला है जिनका दीन और शीन सही नहीं निकलता उसे गुलदस्ते में चढ़ा दिया। नबी के काम में नुक्स निकालते थे इसीलिए कि नबी को नूर न समझा अपने जैसे समझा। एक मर्तबा उन लोगों ने मीटिंग बनाई एक जवान जो अपने जैसे था उसे तैयार किया जिसकी जबान था तो कमा सकता था खूबसूरत था उसने फर्स्ट क्लास अरबी जबान ने अदान की बिलाल को बना दिया विचार बैठ गए। वो जमाना गुजरा न था जो कलाल कुरान थे बैठ गए तुम नहीं दे सकते आज अब इंतजार इंतजार नमाज कहीं कदा तब उतारे जब कुल बात किया जाके घर को दूर तो ताकि नमाज पढ़ने न आए कहा जब अजान होगी तब आऊंगा अजान तो कब की हो गई गजब हो गया आज की अजान क्या अंदाज थी आपने सुनी मैंने कोई नहीं सुनी गरीब में मस्जिद आपने अजान नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी कहा मैंने अजान नहीं सुनी जब मेरा बिलाल अजान कहता है तो आज सुबील अमीन अजान कहते हैं मैं वो अजान सुनता हूँ तो चलाता हूँ लोगों को ताज्जुब हुआ कि नबी खुदा नमाज कजा हो जाएंगी कहा रात हरकत न करेगी चाहे कयामत आ जाएगी रात अपने मुकाम से हटने वाली नहीं जब तक मेरा बिलाल अजान न दे। तो ये हबशी गुलाम ने ये मर्तबा पाया कि उनके दावे फरमान पूरा समान आ गया कि बिलाल के मुंह से अल्लाह को अकबर न निकले तो रात हरकत न करे। लोगों को ताज्जुब हुआ ये क्या कह रहे हैं सही मानों में लोगों ने देखा कि रात मुतलक रहती नहीं है अब मजबूरन गुलदस्ते से बिलाल को भेजा गया जब रहमतुल्लिल आलमीन ने वो अजान कबूल की और बिलाल ने जाकर अजान दी बिलाल बहुत से खूबसूरत थे शहजाए करबला में एक हबशी भी है वो कहते हैं इमाम हमें क्यों इजाजत नहीं देती हमारे क्यों बदबूदार है आप काले रसूल है आपके खून की खुशबू और है आप ये नहीं चाहते हैं हमारे बदबूदार खून आपके खुशबूदार खून से मिल जाए और इमाम ने उसे सीने से लगा लिया उसे भी इजाजत मिली यानी सीरत जिसमें थी और दुश्मन भी आया मगर उनके पास सीरत थी तो इमाम ने उसे माफ कर दिया उसका दर्जा और बुलंद हुआ उसको अपना मेहमान कहकर निकाला उसे सीने से लगाया यदि वाकई करबला हमें दर्द दे रहा है हमारे मासूम के आपको यकीन ले ले उनकी जिंदगी का कोई हाल ले ले उनकी जिंदगी का एक लफ्ज ले ले या आशूर के दिन की अदा हो एक्शन हो लफ्ज हो कोई अमल हो तो सारे के सारे हमारी हिदायत के लिए है। पहली हिदायत आशूर की सुबह को लाने की थी कि दुश्मन भी आए तो उसे माफ करे तो हुसैनी होते हैं हम माफ तो कर देते हैं मगर जिंदगी भर नहीं बोलते ऐसी माफी देना अली वालों का काम नहीं है माफ करे तो दिल से माफ कर दे गलती करना इंसान का काम है गलती करके उन पर पछताना माफी मांगना उन्हीं इंसानियत का काम है और गुरु को माफ किया ऐसे माफ करना इबादत का काम है। अब इंसान को दौलत पे जाकर तक बुरा चाहे हम देखते हैं दौलत आगे जाने चीज है पल में चली जाती पता नहीं चलता लोगों के ख्याल और गुमान में नहीं होता ऐसे लोग देखते देखते अमीर बन जाते हैं और देखते देखते गरीब बन जाते हैं वो दौलत हमेशा रहने वाली नहीं तो आप करिए कि जब दौलत हाथ आए तो जन्नत खरीद ले ये काम कर ले कि कल को रही न रही फरीजा अदा कर ले हजूर प्यार छू पहुंच हो यानी दौलत से वो काम करे दौलत पर बुरी चीज नहीं, तो जनाब सुलेमान शाही क्यों मानते? दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत दी तो जनाब सुलेमान को, पूरी दुनिया के बादशाह बने तो खुदा अपने नबियों को दौलत में देता। यानी खुदा ने दौलत दी ये भी बताया कि नबियों का अमल क्या था। जनाब सुलेमान पैगंबर वो खत बरतने वाले थे, वो खत से जिंदगी गुजारने वाले थे कि कुरान गवाह है माल गनीमत से एक पैसा अपने लिए खर्च न करते थे। एक मरतबा वो जब दरबार के काम से फारिग होते थे तो छलिया बनाते थे कुरमे की पत्ते की, खजूर के पत्ते की, जाय के पत्ते की छलिया बनाते थे। हाथ से बुनी हुई छलिया जब तैयार होती थी तो एक कम्बल रोल लेते थे कि कोई पहचान नहीं, बाजार में बैठ जाते थे, छलिया बिकती थी उन पैसों से रोजा इफ्तार करते थे, हमेशा रोजे से रखते थे और उसमें जो बचा पैसा वो लेके रात को घर में जाते थे। वो गरीबों में बात देते थे, अपने आप पर उसने एक पैसा मजदूरी के खिलाफ पर खर्च नहीं किया। हमें डर दिया कि हमारे पास सल्तनत भी थी मगर हमें ये भी हुक्म नहीं कि आप ऐसे रहे। इमाम शाह इमाम करता है गरीब ने एक सल्तनत का वजीर हो के बता दिया। उनका बात का बात किसी ने ठोका कि भाजपा के अमचंद ने कभी ऐसा कपड़ा नहीं है, कहा माहौल के मुताबिक पहनना चाहिए। जो हसन मुस्तफा लिबास पहनते थे, जो मौलाए कायनात पहनते थे, बराबर है मगर ये ख्याल रहे उसमें किसी का हक को नहीं है, उसमें कोई गलती बात तो नहीं है और हमने हम पर जो हक है वो अदा किया है कि चाहे वो पहने आप। तो यहाँ दौलत के जरूर के लिए एक शिकायत हमें मिलती है। हारून रशीद का एक वजीर है जिसका नाम है बरमखी, बरमखियों उसका नाम है बरमखी के नाम से मशहूर है, नाम तो कुछ और है। वो वजीर बरमखी, वो बरमखी की वो शांति कहते हुए एक मरतबा हज को गया। हज की पूरी सफर जाते और आते उसने बरमखियों की इतनी तारीफ सुनी के साथ इजाजत करे तो वो मतलब है तो उसके पास बरमखी का गुंडा ये करता है, उसका काफिला वो करता है, जब करे तो वो कामयाब होते। यानी घर से लेके मका तक, मका से वापसी तक वो थक गया बरमखी का जिक्र सुन सुन तारीफ सुन सुन के। बादशाह को एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये मैं सुल्तान हूँ, ये बरमखी सुल्तान है। मगर जब शादी के बाद बरमखियों पर ऐसा सवाल आया वो बरमखी एक न बचा, वो हारून रशीद ने सुन के कत्ल करवाया। मगर उससे पहले की बात के लिए यह बरमखी जो वजीर है वो बेऔलाद था, खुदा ने उन पर नवाजिश की, एक औलाद दी, औलाद ने एक बेटा दिया, उनकी खुशी क्या कहना। जब एक वजीर को आप देखेंगे इतना दौलतमंद है तो वो सल्तनत कितनी बड़ी होगी, हारून रशीद के पास क्या न होगा। वो यशिया बरमखी कहता है कि उसने ایک خوشی کا جشن بنایا اور سارے شاعروں کو بلایا. بس شاعر ان کی تاریخ میں شعر کہتے اور انعام پاتے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آنے لگے, انعام پانے لگے, شاعر بنانے لگے. سب سے آخر میں ایک شاعر آیا, اس نے دو شعر کہا, مگر ایسی اس بات سے اس نے تعریف کی کہ وہ جیسا گرپتی خوش ہو گیا. اب تو اس نے جو تھیلیا نگر کی منگاتا تھا نا, اب اس نے کہا جتنا اب میرے پاس یہاں موجود خزینہ ہے وہ تمام اسے دے دیا جائے. جو خزینہ الگ سے رکھا ہے وہ نہیں, مگر یہاں جتنا اس نے جنان کے طور پہ دینے کے لیے منگوا کے رکھا ہے وہ جتنا بچا سب اس کو دے دے. اب اتنا سارا تھا کہ بس کوئی تھالے میں آ نہیں سکتا, کوئی بس میں, کوئی بیچے میں آ نہیں سکتا. ان کے غلاموں نے پلنگ سے ڈالنا شروع کیا. جب پلنگ چھت سے فرش سے لے کے چھت تک بھر گیا, پہلے وہ چھت والے پلنگ رکھتے تھے وہ بھر گیا, تو غلام اٹھا کے دربار میں لایا. اب وہ شاعر کی خوشی کیا کرنا, اب تو اسے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے. اتنی دولت ملی, اتنی دولت ملی, سات پتر تک ختم نہ ہو اور شادی بھی ہو رہا اتنا جمع. اب تو اس نے وہ شعر لکھنا چھوڑ دیا, وہ دو شعر ان کی ہدایت بن گئی, بس وہ ان کا روپ بن گیا. پورے دن رات اتنا بڑ میں رہتا ہے, وہ لائن بڑ بناتے رہتا ہے. سب سال میں ایسا چھوار کرایا, جانے ہارون رشید نے پرمتی نے کیا نہیں پایا, کون سا جھگڑا پسند آیا کہ اسی ہارون رشید نے ایک ایک پرمتی کو چن چن کے سب کروایا. اب جو بچے وہ ادھر ادھر پھیل گئے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اپنا نام ظاہر کرے تو ان کی موت ہے. یعنی یہ شاید شام چلا مشن چلا گیا, ایسے وہ شاعر وہاں گیا. ایک مرتبہ وہ حمام میں نہانے گیا. وہ زمانے میں گھر میں حمام کم باہر زیادہ عرب کا رواج ہے, تو وہ حمام میں گیا. اس نے حمام سے مالک سے کہا کہ ہمیں کوئی اچھا ایسا غلام دو کہ جب ہمیں اچھی سی مالش کر دے. کا ایک نیا سر گایا ہے, بہت اچھی مساج کرتا ہے. اچھا اس کو حوالے اس کو کیا, وہ تو ناچا ہے, وہ مساج کرتا ہے, تو وہ بولنے اپنا وہ شعر گنگناتا ہے. وہ شعر سن کر وہ لڑکا کا ہاتھ رکا, تم یہ شعر کہاں سے سیکھ کے لائے؟ کہاں میں نے بتایا ہے, میرا بتایا ہوا ہے؟ کہاں نہیں, ہاں میں سچ کہتا ہوں, کب بتایا تھا؟ کہاں ہارون الرشید کی وہ تھی کہ جہاں بیٹا پیدا ہوا, ان کی خوشی میں ہم نے بتایا تھا, ان کے انعام پایا تھا, کیا انعام؟ وہ اپنا انعام دلوانے رہا, وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. اس نے مالک کو بات دی کہ یہ دیوار کو کیوں رکھتے ہو تم شریف میں؟ وہ مالک آیا, اس نے پانی چھڑکا, اسے ہوش آیا, کہا تم کبھی بیمار تو نہ تھے, تمہیں ہوش آ گیا. کہا اس کے شیر نے ہماری روح لے لی, اس کے شیر نے ہمیں بے ہوش کر دیا. کہا شیر میں ایسی کہا تو پھر تمہیں کون سا شیر پڑا؟ کہا یہ شیر تو میری زندگی ہے, میں نے وہ شیر پڑا کہ وزیر کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تھا, ہم نے اتنا سارا انعام پایا, تاریخ میں کوئی شاعر نے ایسا انعام نہیں پایا ہے, ہمارا شیر بھی ایسا ہے. اور سن کے وہ بچہ گھر بار ہونے لگا. وہ 12 سال کا لڑکا کہتا ہے, جس بچے کی ولادت میں تم نے یہ جنان پایا تھا میں ہی وہ بچہ. سچ رہا نہ کاٹ رہا نہ سلطنت رہی, 5 سال جس بچے کا ایسا ایسا آرام کیا, وہ 12 سال کا نہ ہوا تو 2 سال سے تمہارا سروس تھا, وہ 12 سال کا نہ ہوا تو لوگوں کی مساج کرنے کی سروس کرنے لگا. یعنی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ آنے جانے ہے. وہ بچے کا رونا اس قدر کا تھا کہ وہ شاید کو رہنا گیا, اسے دودھ دے دیا, آج سے تم میرا پتا ہے سلوار. ہمیں ہزاروں ہم نے دولت مند کو دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اور ہے, اولاد اور ہے, ایک بڑی حکایت میں جس کے گھر پہ ایک مسجد میں پڑی تھی, وہ پوری آزادی کی ہے, وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب بیٹھتی ہے फिर वो लिकायत में भी ऐसा था कि एक बादशाह ने अपने बेटे के लिए कई हजार दिरहम महल घोड़ा ये कुछ पहना और एक जो बादशाह था अल्लाह वाला उसने अपने बेटों के लिए कुछ न छोड़ा था, हद में चलने वाला था, मगर चंद साल 20 या 32 साल का कमाना और इमाम जाफर तारिक अल इस्लाम के उनकी जबानी ये बयान है कि वो इतने मालदार हो गए कि हुकूमत को डोनेशन देने लगा, जिसके बच्चे तो भिखारी हाल में छोड़ के गए थे और जिसके बच्चे के पास इतना वो था वो मिस्र की जामे मस्जिद के पास खड़े रहते फकीर की कतार में और मिस्र वाले इमाम है यानी दौलत आनी जानी है ऊपर जरा भी तकबर न करे, गुरूर न करे, बल्कि शुक्र न करे, उसमें दिए तो खलीफा अदा कर ले, नेक काम में खर्च कर ले, पीछे औलाद के लिए इतना ही छोड़े जितना उतना हक है, बड़ी दौलत औलाद के लिए ईमान है, नेक तरबियत है, नेक सिफात है, अच्छे अखलाक है, वो उनका गुस्सा है, उनकी मुकद्दर उनके साथ ये नहीं कि हमको हमारे लिए कुछ न करे, हमारी औलाद हमारी औलाद हमारी औलाद हमारा फरीजा हम अदा न करे और खुशियत करे तुम ये करना तुम ये करना जी नहीं, हमारे हाथ से हम नहीं करते बच्चे क्या मालूम क्या करेंगे, फिर क्या होगा। एक मरतबा वो नबी की हदीस बनना नहीं है, आप सबने वो वाक्य सुना होगा कि पूरा गोदाम खराब करने के बाद नबी चटाई उठा लेते क्योंकि वकीयत थी मरने वाले की कि मैं मर जाऊं तो ये नबी के हाथ खराब कराना, खराब करके नबी उठे जिस मौसी का चटाई पे बैठे थे वो भी उठा के खराब में दे दी नबी ने, जब ये उठाई क्योंकि उनका वकीयत के दो बात पे जो है वो खराब कर दे, अब उठते है तो चटाई के नीचे से एक दाना कुरमा वो भी जमा हुआ निकला, नबी ने हाथ में लेकर कहा कि जीते जी अपने हाथ से इतना देता इतना सवाब इतना मिलता कि आज उसे जितना ये गोदाम का मिल रहा है, यानी सिर्फ तो देना है हमारे बस नहीं चलता पैसे खराब कर दे अभी, अब देख तो वो है यानी ये दर्द है यहाँ सारे अजीब व गरीब दस मिलता है, मैं ये नहीं कहती कोई दे कहेंगे कि जब भी देखो ये दर्द दे रही है दर्द दे रही है, अगर हाथों में जन्नत कभी हमसे भी पूछेंगे तमाम जमाना कभी हमसे भी सवाल करेंगे कि तुझे मिम्बर भी मिला था तुझे मजबा भी मिला था तूने हक में बयान किया मौला की सहूलत से जहाज रखा है इसे अच्छा नहीं लगता मौला का नाम लेना वो तो हमारी शान अभी जो 5 महीने है उसमें मैं मौला भी बयान करूंगी भी बयान करूंगी साथ में आप सबकी जो फरमाइश है जितनी मैं पड़ी जितने मौला गांधी करीब के नाम फरमाए उसना पड़ी उनकी थोड़ी थोड़ी तफसीर करूंगी करवा पूर्णामी लगाम है आज से 4.5 साल के पहले का वाक्य है। पूर्णामी मकाम है वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना ये था कि हिसाब ये कहता है कि हिंदुस्तान में राजा दशरथ का जमाना था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं उसके बाद तो पल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा ही सुन पड़ी थी उसको तो बेटा है ये इस्माइल है ये इस्हाक है। इस्माइल की दास्तान सब जानते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म आगे जाते हैं बीवी बच्चे को जंगल मैदान में छोड़ते हैं उसके बाद माँ बच्चे के लिए पानी की तलाश करती है बच्चा जमीन से बीजा रगड़ता है कुदरत ने बता दिया कि माँ की दुआ में ये ताकती है कि जमीन सीना साफ करके पानी निकालती है माँ हाजरा घबराती है और पानी गर्मी की मौसम है गर्मी की सुबह से इसमें का पानी फैल गया रेत में, तो माँ हाथ से पानी के अतराफ मुढ़ेर बनाने लगी और जबान से बेफासला कहने लगी दमदम, यानी रुक जा रुक जा। वो चश्मे का नाम भी दमदम हो गया। जबाने हाजरा आज तक याद रह गई लोगों को। एक मरतबा अब वो बच्चा दिन में सुबह में वो आनंद था कि बच्चे के लिए पानी नहीं, कुछ सहारा नहीं, शाम करने से पहले पूरी बस्ती आ गई। वो बस्ती जुड़म बकरिए वाले आए, पानी देख कर वहाँ बस्ती बताई। उसके बाद वो बकरिए वालों ने अपने कबीलों को बुलाया। तादाद इतनी बड़ी वो कबीले का सरदार था। उसके बेटी की औलाद में जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने ऐलान किया, तुम मुझे सरदार मानते हो? कहा हाँ। रोया ने कहा हाँ। तो कहा आज से ये मेरा दामाद मुस्माइल के साथ बेटी की शादी करता है और कहता है कि आज से मेरा दामाद आपका सरदार है। जहाँ खड़े रहते उसने ऐलान किया था उसी जगह खाने ये काबा बना है। खाने काबा एक यादगार है दामाद की सरदारी की। नहबात नबी ने दामाद को सरदार बनाया था, पहले भी नबी को सरदार मिली दामाद को। यहाँ इस्माइल और इस्लाम की बस्ती बची, मगर इस्माइल की तादाद इतनी बड़ी न थी। यहाँ तादाद बढ़ने से जुर्म कबीले का पावर बिगड़ गया, बातें बड़ी हो गई, आपस में झगड़ा होने लगा। एक मरतबा रुक में खुदा अरबाब बेजा मिल के एक इमारत बनाते है जिसे हम खाने काबा कहते हैं। अब ये जुर्म कबीले वालों का जोर बढ़ा और खाने काबा की चाबी उसके हाथ में आ गई। आखिर इस्माइल वाला कबीला सर्व हो के इधर उधर फैल गया, यानी हो गया। वहाँ से इसका एक भाई जो था यमन की तरफ जाके बता रहे, अब यहाँ जो कबीला बसा मुंतशिर हो गया है, वहाँ नस्लें गुजर गई। जबकि बात है कि एक मुद्दत इतनी गुजरी के तीसरे खलीफा की खलीफा थी या दूसरे, सबकी बात है। अब जब सबसे वो यमन में बसे बसे आपकी औलाद उसका मजहब तब्दील हो गया, वो पादरी हो गए। पादरी को मालूम है जो ज्यादा मजहब होता है वो पादरी सारी पद छोड़ देता है, जैसे कभी जनरल कुमरा को रिश्ते नहीं। वो घराना इतना, यानी वो अस्हाब की औलाद, वो घराना इतना मजहबी इतना मजहब है कि वो दौलत छोड़ के और अल्लाह का नाम लेके पादरी बन जाते हैं। ईसाई ने ज्यादा मजहबी वो माना जाता कि दुनिया तर्क करके सारी दौलत खरीदकर कुमरा के हाथ आई हो, तो जनरल कुमरा बाप के साथ से मदीना आती है, कलेज के हाथ में आई बाप राजे जन्नत होता है। कभी जनरल कुमरा एक अकेली दौलत वाले पूछते, मगर उनका चचा था एक महाराज उमर अल कैद यमनी, आपके दुआओं में उसका नाम सुना होगा, बड़ी तासीर वाली दुआ है, दुआए यमनी के नाम से लोग याद करते हैं। वो उमर अल कैद थे, अब उनके हिस्से में दौलत आने लगी, उनका खानदान भी सारा का सारा पादरी बनने लगे, वो भी सारी मतलब से जो लीडर बनने लगे। एक मरतबा यहाँ उमर अल कैद की बीवी मर जाती है। उमर अल कैद को दो बेटी है, एक बेटी का नाम सलमा है जो बड़ी है सलीमी है, बड़ी है छोटी का नाम सलमा है। वो सोचता है कि मेरी बहन की तरह मैं भी क्यों ना मुसलमान हो जाऊं। बहुत बड़ी शख्सियत की उम्र है, माल भी इतना था, असल भी इतनी थी, अफलाद भी ऐसे थे, ईमान भी ऐसा था, नक्की कर लिया कि दोनों बच्ची को वहाँ ले जाऊँ जहाँ कभी जन्नत कुमरा है। जब पहुंचे हैं तो वो जमाना था तीसरी खिलाफत का, अब पहले तलाश रही कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, मुझे कोई शरीफ मिले। कौन कहता कि यहाँ शरीफ कौन है, जो मजदूरी करता है यहूदी के बाद में उससे कोई शरीफ कहते नहीं, शराब पिए जुआ खेले, मगर जिनके पास कौन है वो शरीफ है। तो जो बेचारा नेक है नमाजी है, मगर دولت نہیں تو وہ شریف نہیں. کسی نے وہ دربار بتا دیا کہ یہ سڑکوں کا دربار ہے, وہاں آن کر دو تین دن دیکھا چلے کا بڑا مسلمان ہوئے, مگر کہا یہ شریفوں کا چلن ہے بہت ہوشیار سے. اب اسے تلاش ہے رات کا کھانا حرام, رات کا سونا حرام, دن کا کھانا حرام, کوئی شریف ملے تو میری بیٹی کا حرض کروں. یہاں ایک مرتبہ وہ نکلے تلاش میں تھکے ہارے تبدیل کے لیے بیٹھتے, بعد میں بیٹھے اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے, مگر چہرے کی طرح تجیب ہے, تمام چیزیں خدا سے خالی نہیں ہے, مگر یہاں بیٹھ کے کوئی مجھے مزدوری بھی نہیں کرنے دیتا. وہاں بھی لوگ آ کے کچھ کہتے کچھ پوچھتے ہیں, جب وہ مزدوری کے کام سے خالی ہوا چہرے سے مزدوری کی درد کوئی نہیں ہے, آنکھوں سے پسینہ سوکھا نہیں ہے, مزدوری کے پیسے جیب میں لے کر ایک بستی میں چلا. عمر القیس نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ چادر والا ہے کون, دیکھا ایک غریب بستی میں آ گیا, بچے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے, زبان نے آزاد کیا, پورے اتنے راضی ہو گئے, اس نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا, کسی کی خدمت کی کسی کو جان دیا کسی کو لفظوں سے مدد کی ہاتھ سے مدد کی, جیب خالی کر کے عمر القیس پیچھے پیچھے ہے, وضو بنایا نماز پڑھی پھر پیچھا کیا, واپس مگر ہمت نہ بڑھی کہ اسے پوچھے تو ہے کون. اس مرتبہ دوسرے دن پتا چلا, دوسرے دن دوسری بستی میں گیا, لوگ اس کو سر آنکھوں کو بچانے کے لیے تیار, بستی والوں سے پوچھا یہ ہے کون, کہا نہیں پہچانا یہ تو مولا کائنات ہے. یقینوں کی خبر لینے والے ہیں یہی ہے, بےوں کا سہارا ہے, غریبوں کے مددگار ہے, یہ حقدار ہے, وہ خالی پن بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ خوش ہو گیا اور خوشی پتا لگ گیا, رات کو نیند نہیں آتی ہے, سب سے ملے. سورج کی پہلی کرن مولا کائنات کے گھر سے آئی, اس سے پہلے عمر القیس آ کے کھڑا ہو گیا, جب کل بات کیا کون کہاں کتنا, حضور میں ہوں, ابھی نام کا بتایا تھا, اندر سے کہا اچھا عمر القیس آ جاؤ, کہاں تمہیں ہمارا نام بھی پتا ہے, کہاں تمہارا کام بھی پتا ہے, تمہارا باپ کا نام بھی پتا ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے بڑا مالدار بڑا امیر انسان, جب سر سے ہاتھ بیٹھ گئے تو مولا پوچھتے ہیں یہاں پہ جو کچھ نام تو محسوس نہیں ہوتا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں جنت کی تنہا جا گیا, میں چوبا کی چھاؤں میں آ گیا, اب میں مقام پر آ گیا. مولا اسی بات سے پوچھے ہاں بتا تجھے کیا کام ہے, مولا میرے پاس دو بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں اگر آپ کا شہزادہ قبول کرے تو میری ایک بیٹی سے آپ کے شہزادے کے ساتھ شادی ہو جائے. مولا خوش ہو گئے, سبھی میں میری بیٹی تھی, میں آ گئے جو بڑی بیٹی کے ساتھ اب کرے, میری بڑی بیٹی بڑی ہے کافی چھوٹی ہے, اس کی ماں نہیں ہے تو بڑی بیٹی بہن اسے سما لیں گی. یہاں لاش مولا کے گھر پلنے لگی, سلمہ بچنا سارا مولا کے گھر دیتا, امام مولا کے ہاتھ, امام حسن کے ہاتھ, اور عمر القیس نے خلیفۃ الکبریٰ کی طرح ساری دولت مولا سے قدموں میں ڈال دی اور قمر کی طرح غلامی اختیار کری. اب یہاں دن کٹنے لگے کٹنے لگے, یہاں تک کے مولا کے بعد امام حسن مجتبیٰ میں داخل کے اندر ہوئے. اب بہن نے وصیت ادا کی, شہزادے امام حسین سے کہا کہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ جب یہ جوان ہو تو میں عرض کر دوں, آپ چاہے تو آپ سے, اور امام حسین اسلام سے قبول کیا, اس کا نام سلمہ تھا. امام حسین نے پیار کا نام رباب دیا, اس کا نام شبیبی تھا, مگر حسن مصطفیٰ نے پیار کا نام فروا دیا. اور بہت آزاد حسین मुसलमान और सलीमी वो मरने पड़े क्या कहना वो खातून का वो पंजे से तो बाप की उसने खिदमत की थी कुदरत रसलाम से ऐसा दिया थोड़े ही अरसे में उनकी गोद आबाद हो गई पहला बच्चा शाहजादी सुखी आई घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई खातून ने जन्नत की शक्ल लाई हुसैन जनाब सुकीना पैदा होने से पहले इमाम हुसैन को एक ख्वाब आया था ख्वाब में नाना रसूल ने खुदा आते हैं माँ फातिमा आती है शहजादा खुश हो जाता है अम्मी अम्मी मैं बहुत छोटा था आप दुनिया में चली गई अब आपकी जियारत को दिल होता है इसकी जियारत करिए नाना की जियारत का दिल होता था तो साझा कर लिया अकबर की जियारत कर लेते थे इमाम हसन की जियारत का दिल होता था तो फातिमा की जियारत कर लेते थे बाबा की जियारत का दिल होता था अली अब्बास की जियारत कर लेते थे वहाँ एक बच्ची को बेको दे जाएंगे जो शक्ल सूरत में नहीं वो जनाब सुखरा मगर पूरी खुशबू वो थी जो खातून ने जन्नत में जिस बाने में इमाम हुसैन उसे सीने पे सुला के कहते थे कि जब मैं छोटा था माँ के सीने पे सुलता था ये खुशबू लेता था उस सीना तुम में आती है अब तुम मेरे सीने पे सो जाओ और जब जनाब अलीअकबर पैदा हुए ने सिर्फ 12 दिन के थे जब वो जमात की करबला की होती है 27-28 रजब को सिर्फ 12 दिन के शहजादे अलीअकबर थे वो तो 6 महीने के जहाँ से करबला में हुए सफर में मक्का में सारा वक्त कटने के बाद 6 महीने के हुए तो अल्लाह ताला ने उसे जब उसके ऐसे काजू का आलू को खरीदने पर डॉक्टर ने कहा ये बच्चा 7 साल से ज्यादा किएगा नहीं तो सारा घर उसका रहता है ये करबला से सजा बिस्ता शाहजादी सुकीना को पागल मुराद बाबू को उठा उठा सुनते थे अभी चल में न दिया भैया पर सीने की लगाए सुनते थे आप गोदी से कब डालते थे बाबा सीने पे सुला सकते सुखिया नाज उठा सकते बड़ा नाज नाज कर बचपना गुजरा कुदरत को क्या मजबूर था नौवीं मुहर्रम आलिए ने इस मरतबा इमाम ने तय कर दिया अफसोस का लफ्ज जाया बाबर मुराद को भेजा इतराज की मोहलत ले लो मोहलत ली नहीं लोगों को दी मोहलत अल्लाह ताला ने हुसैन के यहाँ जहन्नम है यहाँ जन्नत है गाड़ियों एक रात बीच में है आ जाओ हमारे साथ हो जाओ वो हो गए उसका सब भूत आया भूल उसका भाई उसका बेटा उसका गुलाब यहाँ कहते हैं कि नौवीं को जब तय हो गया है तो रबाब समझी के हालात अच्छे मालूम नहीं अल्लाह बुल्ला आखा बुला एक बार कभी इमाम हुसैन को बुलाया गया कहा मैं गैर मैं सैदानी नहीं पाता आखा हमने माना बाद शहादत इमाम लोग सैदानियों की इज्जत करते मेरी गोद में इज्जत रसूल है मेरी गोद में इमाम की औलाद है मैं उसकी कैसी परवरिश करूंगी आपके बाद मैं उसे कैसे संभालूंगी वो बच्ची का नाज नाज क्या कहना मैं उसे कैसे पाल सकती हूँ एक मरतबा मैं आपके सामने उसे आपके हवाले कर देती हूँ शहजादी ज़ैनब को बुलाया गया आप गुजरे में गई दोनों बच्चों को तैयार करके आई ये सैयद شہزادی سکی نہ کو شہزادی زینب کی گود میں بٹھا دیا. شہزادی تم نبی کی نوازی ہو, علی کی بیٹی ہو, تم امام کی اولاد کی پرورش کر سکتی ہو, اب سے نہ ہوگی. آج سے تم سنبھالو, اور اصغر کو مولا کی گود میں دے دیا, اسے تم سنبھالو. مولا کہتے ہیں تھوڑی دیر صبر کرو, اصغر کو تو سینے سے لگا کے رکھے گئے. شہزادی شہزادی زینب کہتی ہوگی کہ ہم نے وصیت سے ہاتھ رہا تھا, مگر ہم مجبور ہیں, ہم کیسے سینے سے لگا کے رکھتے. اب تو یہ ہے, اب شکیلہ کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے, ہمارے بعد ہی رکھنے میں تھا, ہماری چلائی کر کے باقی ہوئی تھی, مگر ہم اتنا بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان لڑکی کا گلا چھڑوا دیں, ان کی ماں کو چھڑوا دیں, ان بچی کو پانی پلا دے, یا ہماری گود میں بیٹھے تو ہم اسے پکڑ سکے. کئی مرتبہ بچی یہ لگا سکے, ایسے ناچے نام پلی بچی. بچوں کی تو عادت ہوتی ہے اچھے خاصے محل میں مہمان بنا کر لے جاؤ, بچے گھبراتے امی گھر چلو امی گھر چلو, مگر یہاں تاز و تعریف کا کھانا ہے, بچے گھبرائے نہیں تو کرے کیا. اور بچے جب گھبراتے چلے تو میری شہزادی اسے لے کے سلطان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی. شام میں بھی شام نہیں, بیوی نے سوچا یہی دن رات کا اندھیرا ہے اور شام کو اور اندھیرا چھاتا ہے تو باہر والوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اس بارے میں آپ بچے کو لے کے کھڑی ہو گئی کہ باہر کی چہل پہل بچے دیکھے ان کا دل بہل جائے. بازار آنے اسے بچوں نے دیکھا, جب شام میں شام گلی میں تو شام والے لوگ تیز قدم جانے لگے, ان کے ہاتھ میں بتا کچھ پکڑ کے. ایک مرتبہ بچی نے پوچھا یہ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں, میری شہزادی نے کہا یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. بی بی نے کہا اوکے ابا, ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. ہمارے گھر شہر محلے میں تھا, اپنے گھر ہو گئے. بچی کا دوسرا سوال ان لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے, کہاں ان کے ہاتھ میں اپنے بچوں کے لیے پھل اور میوا لیے جاتے ہیں. بابا ہر میرے بابا کہاں تمہارے بابا سفر میں ہے, ارے یہ سفر کیسا ابا جو سفر میں گیا وہ آیا نہیں. دادا نے پوچھا جناب آدم علیہ السلام قریب آئی, جب بچے رونے لگے شہزادی رونے لگی تو آدم بیمار آئی قریب آئے کہ بچوں کو سمجھائے, اتنے میں اٹھتے ہوئے تیمور نکلے. شہزادی مڑی اور شہزادی زینب روتی ہے تو اسے چھوڑ کر ہماری چھوٹی شہزادی مڑی بیمار کرملا کی طرف, کہا کہ جب یہاں یہ سارے کے سارے تیوس ایک ساتھ کہاں جاتے ہوں گے, کہا بہو اپنے اپنے گھر جاتے ہیں. رات کو وہ کھا پی کے اپنا پیٹ بھر کے اپنے آشیانوں میں جاتے ہیں. وہ بھوکے بچے, وہ پیاسے بچے. سشینا نے کہا کہ پرندوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے, پانی بھی ملتا ہے, ان کے لیے گھر بھی ہے, بھائی جان ہمارے لیے کچھ نہیں. ایک مرتبہ میری شہزادی رونے لگی, بچوں کو لے کے آگے آئی. شہزادی کہانی سہرا کرتی ہے, بچوں چلو میں تمہیں کہانی سناؤں, کہانی کے نام سے بچے ہمیشہ بہر جاتے ہیں. وادہ راجا اس میں آپ نے کہانی شروع रूप थी। मैं तो वो तो शादाबी की कहानी, उस सानिय जहरा की जबान थी कि वो जो तालिब जिले साहब के दरबार में गिराबाद में नो दाल डाल कर रोने लगे, वो उनकी जबान थी। मैं नहीं कह सकती, मैं दो ही लफ्ज कम थी। मेरी शादाबी ने कहानी शुरू की कि छोटा गुरु और बड़ा गुरु ने हस्तुक आखिर के लिए जंग सी गई। वो बड़ा गुरु ने तंग किया, वतन आवारा किया, खेल के चटियल मैदान में लाए, जंग छिड़ गई। और छोटा गुरु से एक के बाद एक निकलने लगे, यहाँ तक अब तो छोटी फोज खत्म होने आई और फोज का सरदार अलमदार की बारी आई। जब ये कहता था शाहजादी के मुंह से बेसाब का निकला मेरे चचा, कहा बच्ची कहानी में बीच में बोलने से कहानी का लोग दूर जाता है, तो बीच में न बोलो। एक मरतबा भी चुप हो गई, कहा अब तो एक जवान बासी था जिसका नाम अली अकबर था। मेरी शाहजादी ने कहा मेरा भाई नाम है अकबर। मेरी शाहजादी रोने लगी, ये कहानी का बहाना था। मेरी शाहजादी खुद बकरीद पड़ती थी, खुद रो लेती थी, खुद खामोश हो जाती थी। सजादारों मिल के कहते ना, अरे मेरी बीबी हमारे साथ खाने दादा अली महर्रम से कोई जिक्र ऐसा नहीं, हमने तुझे याद नहीं किया हो, तुझे तोड़ता नहीं किया हो। यहाँ रोने का सहराम बता हुआ मेरी शाहजादी राम अकबर इतना रोई, कहा बच्चों रात काफी गज गई है और मेरे आलम किसी माह को जवान लाल का दाग न दिखाइए। कहा बच्चों सो जाओ, रात काफी गज गई है, बाकी की कहानी मैं कल कहूंगी। वो अहलकार के बच्चे थे, समझदार बच्चे थे, सब सामरीन की औलाद की सदर करने वाले। कुकी ने कहा बच्चे सोने लगे, शाहजादी सुखीना ने कहा कुकी गवाह रहना, मैं फल से खाक पड़ी रही, मैंने कभी शिकवा नहीं किया, मगर आज की रात बड़ी वहशतनाक मालूम होती है। आज के अंधेरे से मेरा सब गुटता है। ऐ कुकी हमारा वो सके चश्मा रोशन कर दो, ये अंधेरे से मुझे नाराज होती है। लगी तो बच्ची अब सफल आए कहा से, मेरी जान सो जाओ। सचिना ने कहा क्या होगी, अच्छा होगी जब से तुम बाहर गए अब मैं सारों के ठंडा पानी नहीं पिया, हमने शिकायत भी कब की है बुकी, मगर बुकी अबार रोने पर जो गाँव के भेजा चुना तो छुट किए देता था ने शिविर, वो सारे जख्म में पीट पर गए, हमारे जिस में एक आग लगी है। अभी दिल को ये चाहता है कि हम नबी ना पहुंचे, सुगरा को साल में याद करे, अगर हम नबी ना न गए मौत ने मोहले न दी और हम न गए, वो भी हमारी एक वसीयत है, गीली जमीन देख के हमें रास्ता ला। रोटे का सहरा बबा अब शाहजादी समझाने शुरू करते, बच्ची सो जाओ, सारी कहते बच्ची सो भी गई उठ भी गई, कहती है हाय बाबा हाय बाबा। खुशी समझी बाप खाब में आए थे और चले गए। बच्ची का रोना और बैठ ऐसा था अहले बैत में दोबारा आशूरा हो गया, ये बीच की ख्वाब का करीब थी। दारोग आया, कहा इन कैदियों को कह दो ये रोने का वक्त नहीं है सोने का है, लगी तुझे कौन समझाए, दुखियों के लिए कोई वक्त मुकद्दर होता है, उसे जब भी अपना दुख याद आए दुखी रो देते हैं। बीबी कैसे करे तो क्या करे, बच्ची बाप को याद करके रोती है। कहा जाओ सर ले जाओ, अरे करते छत्ते बच्चे खामोश होते, दस्त में आपके जब सर लाया गया है, मेरी शाहजादी सब्जी बच्ची के लिए रुतुब भेजे है, मुझे चौथे इमाम इल्म इमामत से समझते थे। सूफी अम्मा खड़े हो जाओ, मेरे बाबा का सर आया है, साथी इनके लिए बीबियां खड़ी हो गई, मेरे चौथे इमाम ने अस्करी के लिए संभाली खड़े हो गए, मगर सिक्की ना بابا کا دور کے تشت کلا کے روبان کا خطا ہوا سر گودی میں لے لیا, زمانے کا انقلاب دیکھا کہ باپ کی گودی میں بچے ہوتے ہیں, یہاں معصوم بچی ہے ان کی گودی میں بابا کا کٹا سر ہے, منہ پہ منہ رکھ دیا, شکایت کرنے لگی, ہائے بابا بچوں کو لباس بڑا پیارا ہوتا ہے, ہائے بابا جب سے آپ سجا دے ہیں کسی نے ہمارا کرتا بدلی نہیں کیا, یہ ہٹا کرتا یہ جلا کرتا اب چلنے پہنا ہے, بابا ہمارا زخمی کارنے کو آپ نے پیار سے مندر پلاش میں جانے میں ٹوٹ لیے, بیٹا بیوی نے کیا کیا شکایت کی ہوگی, مگر شکایت کرتے کرتے یہ تین اکھا ہوش ہو گئی, کچھ ہی سب تھی بچی کو تسکین آ گئی, ماں نے جو بات اٹھانا منہ سے چیخ نکل گئی, آج کی نما میرا زندہ تو نرالا ہو گیا, اب بات کے پیچھے میرا پیا کون پڑے گا, سوچا کا بھاگو اور کیا تھا زندان سنا ہو گیا, جب سالا بھی آئی گزل دیا گیا, کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے قتل قبول کیا, گجی کے کرتے میں اسے دہنا دیا یا لوٹ کے پال سے کرتا بچی کا پکایا گیا, جو بھی ہو مگر اب سب مل کے ایک مرتبہ مولا کائنات کو کہتے, میں نے آج مجلس کو بہت جھول دیا, رزت کا بیان ہی زیادہ ہو گیا, مگر میں کروں کیا, یہ بیان ہی ایسا ہے, بس دعا کریں خدا کرنا یہ کوئی کم نہیں, سواج کا میں غصہ ہے آپ کی زحمت ختم, جو لفظ کہنا ہے سب مل کے کہہ دو ایک مرتبہ, یا علی سید خدا وہ وقت بڑا آسان تھا, تم نے بڑے خیبر اخاڑا, آپ کا بیٹا جی آپ کا بوتا جی آسمی شیر علی وہ زوال علی علی آج ان کا کیا کہنا, ہاتھ میں اکڑی کام میں ایریا کمر میں زنجیر گہے میں کھا جا کو ہاتھوں سے بہت کی نیت بھی گیلی زمین دیکھنے کہا جائے, کیسا زندان میں قبر بن گئی, جسے نصیب ہوئی ہوئی نہ ہوئی اللہ جلدی بلائے, وہ معصومہ کی قبر ہے, اور رازا نے اسے ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کی وفات جینی پہل پید کا پروانہ بن گئی, لام و سام ہونے لگی, اب جب رہائی ہوئی ہے تو رازا نے اسے اب ماں کیا کرے ہے, اور کہا دادو پانی بھی ہے سماجی بھی ہے پردا بھی ہے, ایک کے بعد ایک بیویاں جب سماجی میں بیٹھنے لگی ہے, میری شہزادی نے دیکھا کیا دیکھا رباب دور کے شہزادی پیچھے گئی, رباب چھوٹی تھی تو چلی پٹ کے پڑی ہے, زبان میں کیا جا سکتی, ایک مرتبہ رباب کو سب جا کے لے آئے, بیویا سوار ہو گئی, لوگ آتا رو محمل کا پردہ گرا, میری شہزادی بانے پہلا میں پردہ آیا, بیویوں قریب آ جاؤں اور قریب آ جاؤں, میں ضعیف ہوں میں گلے میں اتنی طاقت نہیں, میں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں, بیویا قریب آ گئی, کیا بات ہے شہزادی کہے کیا بات ہے, اب ہم تو جاتے ہیں بار نقل آپ لوگوں سے ایک وصیت ہے, یہاں میری ایک بچے بات رہی ہے میری بچی کی قبر کو واقعہ کرنے کے بعد نہ رکھنا, میری وہ بچی ہاتھ گھبراتی تھی, وہ समारोह से करते ना तो मेरे छोटे हमारा सा खाने में आ जा आज तेरे नाम कितनी समाए चलेगी आज तेरे नाम कितना शरबत बटेगा मेरी छोटी चाचा जी जमाने में अरे पीछे डाल दिया मेरे हम तेरी याद से राखों में
हमारे का कोई ताजियान
खड़ा